آگے سبق دیکھیے بھائی. المستثنى اي ما يطلق عليه لفظ المستثنى في اصطلاح النحاة على قسمين ولما كان معلوميته بهذا الوجه الغير المحتاج الى التعريف كافية في تقسيمه قسمه الى قسمين وعرف كل واحد منهما لان لكل واحد منهما احكاما خاصة لا يمكن اجراؤها عليه الا بعد معرفته فقال متصل ومنقطع. آج ہم مستثنا کے بارے میں پڑھیں گے بھائی. منصوبات کی بحث چل رہی ہے, پہلے اس کو اچھی طرح سمجھ لیں پھر اس کو کتاب میں سے بھی پڑھتے ہیں. مستثنا وہ ہے جو الا اور اس کے اخوات کے بعد واقع ہوتا ہے. کس کے بعد؟ الا اور اس کے اخوات, یعنی الا اور اس کے مشابہ جو کلمات ہیں. وہ کلمات آپ کو بتلائیں گے, الا کے ساتھ کل 11 کلمات بنتے ہیں بھائی. جیسے الا ہے, خلا ہے, عدا ہے, ما خلا, ما عدا, لیسا, لا یکون, اور اسی طرح غیرن ہے, سوا ہے, سوا ہے, اور حاشا. تو یہ 11 کلمات استعمال ہوتے ہیں استثناء کے لیے عام طور پر بھائی. تو مستثنا وہ ہے جو الا اور اس کے اخوات کے بعد واقع ہوتا ہے, یہ بتلانے کے لیے کہ اس کی طرف اس چیز کی نسبت نہیں کی جا رہی جس کی نسبت ما قبل کی طرف ہو رہی ہے. توجہ ہے بھئی, یاد رکھو ایک الا کے ما بعد آئے گا, الا کے ما بعد جو آئے گا وہ ہے مستثنا, اور ما قبل میں عموماً جو آئے گا وہ کیا ہے؟ مستثنا منہ. تو ما قبل کی طرف جس چیز کی نسبت ہو رہی ہے اس کی نسبت مستثنا کی طرف نہیں ہوگی, مستثنا کی طرف نہیں ہوگی. مستثنا عربی زبان میں مستثنا کا معنی ہے جس کا استثنا کیا گیا, یعنی جس کو نکالا گیا ہے, یعنی مخرج. مخرج تو پہلے ما قبل کے حکم سے اس کو نکال دیا گیا. مثلا دیکھو, مثال سے بات سمجھ میں آئے گی. مثلا میں کہتا ہوں جا انی القوم الا زیدن, الا زیدن, جی تو ترجمہ کیجئے جا انی القوم,
میرے پاس
ہے. ہاں تمام طلبا عموماً یہی ترجمہ کرتے ہیں, میرے پاس وہ قوم آئی. نہیں بھائی, قوم کا اردو ترجمہ ہے لوگ. لوگ جا انی القوم, یہ الف لام اس پر داخل ہے, معلوم ہو کوئی متعین جماعت لوگوں کی مراد ہے. قوم کا لفظ 3 سے لے کر 9 افراد تک کی جماعت پر بولا جاتا ہے جو مردوں کی جماعت ہو جس میں عورتیں شامل نہ ہو. تو قوم کا لفظ صرف مردوں پر بولا جاتا ہے جس میں 3 سے لے کر 9 افراد شامل ہوں بھائی. ہاں کبھی کبھار تبعاً اس میں عورتیں بھی داخل ہو جاتی ہیں, لیکن اصل کیا ہے, یہ کس کے لیے ہے؟ مردوں کے لیے ہے. تو اردو میں ترجمہ اس کا کیا کریں گے؟ لوگ. اور الف لام بھی داخل ہے, القوم وہ لوگ. معلوم ہوا لوگوں کی کوئی خاص جماعت مراد ہے. فرض کرو اس میں زید بھی شامل تھا. مثلا میرا اشارہ جو ہے درجہ رابعہ والوں کی طرف ہے, اور درجہ رابعہ والوں کے اندر زید بھی شامل ہے, وہ بھی درجہ رابعہ میں پڑتا ہے. تو جب میں نے کہا جا ان القوم, وہ لوگ میرے پاس آئے, تو اس سے کیا پتا چلا؟ کہ زید بھی آیا ہے, کیونکہ زید بھی انہی لوگوں کے اندر شامل ہے. لیکن جب میں نے آگے کہا الا زیدن, سوائے کس کے؟ زید کے. تو دیکھو زید کو میں نے ما قبل کے حکم سے نکال دیا. ما قبل جا ان القوم, یہ القوم کے لیے کون سا حکم ثابت ہے؟ مجیئت والا, آنے والا, اور یہ حکم زید کے لیے ثابت نہیں. میں نے اس کو اس حکم سے نکال دیا. معلوم ہوا باقی سارے آئے ہیں لیکن زید نہیں آیا. معنی سمجھ میں آ گیا. تو مستثنا کسے کہتے ہیں؟ جو الا اور اس کے اخوات کے بعد واقع ہو. یہ بتلانے کے لیے کہ جس چیز کی نسبت ما قبل کی طرف کی جا رہی ہے اس کی نسبت اس ما بعد کی طرف نہیں ہے بھائی. بات سمجھ میں آ گئی. اور پھر یاد رکھو یہ 2 قسم پر ہے, ایک مستثنا متصل اور ایک مستثنا منقطع. متصل وہ ہے جو پہلے داخل تھا پھر الا کے ذریعے اس کو نکال دیا گیا. جیسے ابھی مثال گزری جا ان القوم, وہ لوگ میرے پاس آئے, الا زیدن, سوائے کس کے؟ زید کے. دیکھو زید ان میں داخل تھا اور پھر الا کے ذریعے اس کو نکال دیا گیا. اور دوسرا مستثنا منقطع ہے. مستثنا منقطع وہ بھی الا اور اس کے اخوات کے بعد واقع ہوگا, لیکن وہ ما قبل سے نکالا نہیں گیا ہوگا. ما قبل سے निकाला नहीं गया इसलिए क्योंकि वो उनमें दाखिल ही नहीं था भाई, दाखिल होता तो इल्ला वगैरह के जरिए निकालते लेकिन वो तो उनमें दाखिल ही नहीं। जैसे उसकी मिसाल जिक्र करते हैं नह की किताबों में, जानिल कौमु इल्ला हिमारन, हिमार गधे को कहते हैं, जानिल कौमु वो लोग मेरे पास आए, इल्ला हिमारन सिवाय गधे के, यानी गधा नहीं आया। अब देखो ये हिमार किसके बाद वाके है, इल्ला के बाद, और माकबल की तरफ जिस चीज की निस्बत की जा रही है वो निस्बत इसकी तरफ नहीं है, माकबल अलकौम की तरफ आने की निस्बत है और हिमार की तरफ आने की निस्बत नहीं है, और ये मुस्तस्ना मुनकते है क्योंकि ये उनके अंदर दाखिल ही नहीं था, क्योंकि अलकौम तो इंसानों की जमात को कहते हैं, इसमें बाकी हैवानात दाखिल नहीं। भाई बात समझ में आ गई, तो ये मुस्तस्ना मुनकते है। तो मुस्तस्ना मुत्तसिल किसे कहते हैं, जो पहले दाखिल हो और फिर इल्ला वगैरह के जरिए उसको निकाल दिया जाए माकबल के हुक्म से। और मुस्तस्ना मुनकते किसे कहते हैं, कि वो भी इल्ला वगैरह के बाद होता है और उसकी तरफ भी माकबल की निस्बत नहीं होती, जो निस्बत माकबल की तरफ हो रही है वो निस्बत इसकी तरफ नहीं होती, लेकिन ये माकबल से निकाला हुआ नहीं होता क्योंकि ये उनमें दाखिल ही नहीं होता। बात समझ में आ गई। तो मुस्तस्ना मुत्तसिल के लिए अमूमन नहव की किताबों में, मुत्तसिल के लिए तवज्जो है, मुस्तस्ना मुत्तसिल के लिए नहव की किताबों में जो मिसाल जिक्र की जाती है वो जो मैंने पहले जिक्र की, जा अनिल कौमु इल्ला ज़ैदन, ये मुस्तस्ना मुत्तसिल की मिसाल है। और मुस्तस्ना मुनकते के लिए कौन सी मिसाल जिक्र करते हैं, जा अनिल कौमु इल्ला हिमारन। लेकिन याद रखो ये जो पहली मिसाल है यही दोनों के लिए भी मिसाल बन सकती है, जा अनिल कौमु इल्ला ज़ैदन, ये मुस्तस्ना मुनकते की मिसाल भी बन सकती है। किस तरह, मुस्तस्ना मुनकते किसे कहते हैं, जो पहले दाखिल ही नहीं होता। तो अगर अलकौम से आप ऐसी जमात मुराद ले लेते हैं जिनमें जैद दाखिल ही नहीं है, मसलन आपने अलकौम से खामिसा वाले मुराद ले लिए, दर्जे खामिसा के तलबा, और जैद तो दर्जे राबिया में है, तो जब मैंने कहा जान अलकौम वो लोग मेरे पास आए थे यानी दर्जे खामिसा वाले आए थे, तो क्या जैद दाखिल है, जैद तो उसमें दाखिल ही नहीं है क्योंकि वो तो राबिया में पड़ता है। तो अब आगे फिर मैं कहता हूं इल्ला ज़ैदन सिवाय किसके, जान अल कौम वो लोग मेरे पास आए थे, इल्ला ज़ैदन सिवाय किसके, ज़ैद के, तो ये ही अब मुस्तस्ना मुनकते बन गया। मुस्तस्ना मुनकते भी किसे कहते हैं, जो इल्ला वगैरह के बाद आए और उसको माकबल से निकाला ना गया हो क्योंकि वो उनमें दाखिल ही नहीं था। बात समझ में आ गई। तो लिहाजा अब मैं आपके सामने एक जुमला कहता हूं, मसलन जा, मसलन कोई एक लोगों की जमात मैं मुराद लेता हूं, सालिसा राबिया या खामिसा वाले नहीं, कोई और जमात है, मैं आपसे कहता हूं जा अनिल कौमु इल्ला ज़ैदन, मेरे पास वो लोग आए थे सिवाय किसके, ज़ैद के, अब मुझे बताइए ये मुत्तसिल है या मुनकतिया है। जी आप कहें कि जब तक हमें यह पता ना चले कि अलकौम से कौन लोग मुराद हैं तब तक फैसला ही नहीं हो सकता कि यह मुत्तसिल है या मुनकते। अगर ऐसी जमात मुराद है जिसमें जैद पहले से दाखिल था तो फिर तो ये मुत्तसिल की मिसाल बनेगी, और अगर जैद उनमें पहले से दाखिल ही नहीं था तो ये फिर किसकी मिसाल बन जाएगी, मुनकते की। तो बेआईनी ही वही एक मिसाल मुत्तसिल की भी बन सकती है और मुनकते की भी। दारोमदार सिर्फ इस चीज पर है कि इल्ला के मां बाद जो जिक्र है वो माकबल में दाखिल था या दाखिल नहीं, लेकिन नह की किताबों में अमूमन हिमार वाली मिसाल जिक्र करते हैं क्योंकि वो बिल्कुल जाहिर है, वो तो जाहिर सी बात है कि जो हिमार है वो कौम के अंदर दाखिल नहीं होता। बात समझ में आ गई। हासिल कलाम ये कि मुस्तस्ना मुनकते वो माकबल की जिंस में से भी हो सकता है और उसकी जिंस के अलावा भी हो सकता है। यही मिसाल जान अल कौम इल्ला ज़ैदन, ये मुस्तस्ना मुनकते की भी मिसाल बन सकती है। ज़ैद देखो उसी कौम की जिंस में से है, वो भी इंसान है, ये भी इंसान है, और उनकी जिंस के अलावा भी हो सकता है, जान अल कौम इल्ला हिमारन। बात समझ में आ गई। तो ये मुस्तस्ना की दो किस्में हुई, मुत्तसिल और मुनकतिअ। भाई तो मुत्तसिल जो होता है वो मुखरज होता है, वो पहले दाखिल था फिर इल्ला वगैरह के जरिए उसको माकबल के हुक्म से निकाल लिया जाता है, और मुनकतिअ जो है वो मुखरज नहीं क्योंकि वो पहले दाखिल ही नहीं था। बात समझ में आ गई। यानी माकबल में जो हुक्म है उसकी निस्बत मुत्तसिल की तरफ भी नहीं हो रही, मुनकतिअ की तरफ भी नहीं हो रही, तवज्जो है। हां लेकिन फर्क सिर्फ इतना होता है कि मुत्तसिल जो है पहले दाखिल था फिर इल्ला के जरिए उसको क्या किया गया, निकाला गया, और मुनकते की तरह भी निस्बत नहीं है लेकिन वो पहले दाखिल ही नहीं था। भाई बात समझ में आ गई। अब ये एक नक्शा है भाई, पहले ये नक्शा अपने सामने बना लीजिए, फिर आपको मुस्तस्ना की एराब का पूरा पता चल जाएगा भाई। मुस्तस्ना का एराब मुश्किल है, तलबा बड़े परेशान होते हैं, ये नक्शा बना लें इंशाल्लाह, फिर बिल्कुल आसानी से आप जो है एराब का पता चला लेंगे जी। लिखिए भाई, सबसे पहले ऊपर उनवान दे दीजिए, मुस्तस्ना का एराब, मुस्तस्ना का एराब, ये उनवान है भाई, जल्दी जल्दी लिखिए भाई, मुस्तस्ना का एराब। आगे जी लिखिए भाई, पहली सतर इस्तेस्ना के लिए,
इसके नीचे लिखना।
हाँ, अब तफसील शुरू हो गई, नीचे लिखिए भाई, इस्तेस्ना के लिए, इस्तेस्ना के लिए दर्जे ज़ैल अल्फाज इस्तेमाल होते हैं, दर्जे ज़ैल अल्फाज इस्तेमाल होते हैं जी। अब वो अल्फाज लिखिए, अलग सतर में लिख लीजिए, इल्ला, इल्ला, खला, खला, खालाम अलिफ, आदा, आयन दाल और अलिफ, आदा, मा खला, अब वही खला है, मा भी साथ मिला दें, मा खला, मा आदा, मा आदा, लैसा, लैसा, ये वही अफाल नाकिसा में से जो लैसा है, ला यकूनु, ला यकूनु, गैरुन, गैरुन, गैन यारा, गैरुन, सिवा भाई, सिवा कैसे लिखेंगे, सीन वाव और या लिखें भैया, ऊपर खड़ी जबर डाल दें, सिवा भाई, सिवा। अगला लफ्ज है सवा भाई, सीन वाव अलिफ और हमजा, सीन वाव अलिफ और हमजा, सवा भाई, सवा। और आखिरी लफ्ज है हाशा, हा अलिफ और शीन अलिफ, हाशा। लिख लिया, ये दोबारा सुन लीजिए, इस्तिस्ना के लिए दर्जे ज़ैल अल्फाज इस्तेमाल होते हैं, इल्ला, खला, आदा, मा खला, मा आदा, लैसा, लायकूनु, गैरुन, सिवा, सवा और हाशा, ये 11 अल्फाज आपने लिख लिए। नीचे लिखिए भाई, तफसील ये है, तफसील ये है, तफसील ये है, अलग सतर में आगे लिखिए, नंबर एक नंबर दीजिए, नंबर एक, इल्ला में कुछ तफसील है, इल्ला में कुछ तफसील है, लिख लिया। हां, ये इल्ला की तफसील आखिर में हम लिखते हैं, उसमें तफसील है, बाकी हम लिख लेते हैं जी। आगे अलग सतर में लिखिए, नंबर दो, नंबर दो, खला, खला, आदा, आदा, मा खला, मा आदा, मा खला, मा आदा, लैसा और लायकूनू, लैसा और लायकूनू, लिख लिया भाई। देखो ये 6 अल्फाज हो गए, खला, आदा, मा खला, मा आदा, लैसा और लायकूनू। आगे लिखिए, इनके बाद मुस्तस्ना मंसूब होगा, इनके बाद मुस्तस्ना मंसूब होगा, जबकि बाज औकात खला व अदा के बाद मजरूर भी होगा, जबकि बाज औकात खला व अदा के बाद मजरूर भी होगा, मजरूर भी होगा, लेकिन अक्सर मंसूब ही होगा, लेकिन अक्सर मंसूब ही होगा। लिख लिया
जी।
लेकिन अक्सर मंसूब ही होगा। आगे अलग सतर लिखिए, नंबर तीन, नंबर तीन, गैरो, गैरो, सिवा, सिवा, सवा, सवा और हाशा के बाद, और हाशा के बाद, क्या लिखा, ये चार लफज लिखे हैं आपने, गैरुम सिवा सवा और हाशा के बाद मुस्तस्ना मजरूर होगा, मुस्तस्ना मजरूर होगा। बाज़ उलमा ने हाशा के बाद नसब को भी जायज करार दिया है, हाशा के बाद नसब को भी जायज करार दिया है, लेकिन अक्सर उलमा के नजदीक हाशा के बाद मुस्तस्ना मजरूर ही होगा। लिख लिया। अब आगे इल्ला की तफसील जो है वो लिखेंगे हम, और वो नक्शा है वो पूरे सफे पे आएगा, या कम से कम आधे सफे या उससे ज्यादा जगह तो जरूर होनी चाहिए जी। सफे के ऊपर लिखिए भाई, इल्ला में दर्ज जैल तफसील है, इल्ला ये ऊपर लिखे हैं सबसे, इल्ला में दर्ज जैल तफसील है, इल्ला में दर्ज जैल तफसील है। लिख लिया। अब नीचे नक्शा शुरू होने लगा है, लिहाजा एक सतर बीच में खाली छोड़ दें ताकि पता चले आगे नक्शा शुरू हो रहा है। सबसे ऊपर आपने लिखा ना इल्ला में दर्ज जैल तफसील है, उसके बाद एक सतर छोड़ दें, अब बिल्कुल दरमियान में लिखें मुस्तस्ना ब इल्ला। जी क्या लिखा, मुस्तस्ना ब इल्ला। अब देखिए मुस्तस्ना ब इल्ला से आपने इधर पहले इसको समझ लें, हम तकसीम करेंगे मुस्तस्ना ब इल्ला को, नीचे दो खत खींचेंगे, एक दाएं तरफ एक बाएं तरफ, तवज्जो है, फिर जो खत बाएं तरफ खींचा है उसकी फिर तकसीम होगी, वो उसकी फिर दो किस्में बनेंगी नीचे, फिर उसमें से भी जो बाएं तरफ होगा उसकी फिर दो किस्में नीचे बनेंगी, फिर उसमें भी जो बाएं तरफ होगा उसकी फिर दो किस्में बनेंगी, तो जो बाएं जानिब वाली बाई जानिब होगी वो मुसलसल तकसीम होती चली जाएगी। बात समझ में आ गई, तो आप नक्शा उसी एतबार से बनाइए कि जगह रहे भाई, खत्म ना हो। उस नीचे मुस्तस्ना ब इल्ला के नीचे दो खत खींच दें, एक थोड़ा सा दाएं तरफ ले जाएं एक बाएं तरफ ले जाएं, पता लगे ये तकसीम हो रहा है, दो खत खींच दें, दाएं तरफ लिखें मुनकतिया, और बाएं तरफ लिखें मुत्तसिल। लिख लिया। अच्छा ये जो मुत्तसिल लिखा है अब इसकी फिर तकसीम करें, इस मुत्तसिल से नीचे दो खत खींचें, दाएं तरफ लिखें मूजब, मुत्तसिल से नीचे दो खत खींचें, मुत्तसिल की तकसीम हो रही है भाई, जो चीज मैं दाएं तरफ लिखवाऊं वो दाएं लिखनी है, जो बाएं लिखवाऊं वो बाएं लिखनी है, मुत्तसिल के नीचे दो खत खींचें भाई, दो खत एक दाएं तरफ एक बाएं तरफ, दाएं तरफ जो है वो लिखें मूजब, मीम वो जीम बा मूजब, और बाएं तरफ लिखें गैर मूजब, दाएं तरफ लिखें मूजब और बाएं तरफ लिखें गैर मूजब, गैर मूजब। अब ये गैर मूजब की फिर तकसीम हो रही है, गैर मूजब की इसकी फिर दो किस्में बनाएं भाई, दाएं तरफ लिखें इसके मुस्तस्ना मुकद्दम हो और बाएं तरफ लिखें गैर मुकद्दम। लिख लिया। अब गैर मुकद्दम की फिर तकसीम होगी, दो किस्में बनेंगी, गैर मुकद्दम से नीचे दो खत खींचें, एक दाएं तरफ एक बाएं तरफ भाई, दाएं तरफ लिखें मुस्तस्ना मिनहू मजकूर और बाएं तरफ लिखें गैर मजकूर, गैर मजकूर भाई, गैर मजकूर लिख लिया। हां भाई, नक्शा तकरीबन मुकम्मल हो गया। फिर नक्शे को जरा देखो, सबसे पहले आपने लिखा मुस्तस्ना बा इल्ला, और इसकी फिर दो किस्में बनेंगी, या वो मुनकते होगा या मुत्तसिल। मुनकते आपने दाएं तरफ लिखा है और मुत्तसिल बाएं तरफ। फिर इस मुत्तसिल में तकसीम होगी, या तो ये मूजब होगा या गैर मूजब होगा। फिर गैर मूजब की तकसीम है कि वो मुस्तस्ना मिन्हू मुकद्दम होगा या गैर मुकद्दम होगा। फिर वो जो गैर मुकद्दम है मुस्तस्ना, वो उसकी फिर तकसीम कर दी कि उसमें मुस्तस्ना मिन्हू मस्कूर होगा या गैर मस्कूर होगा। बात समझ में आ गई। देखो एराब अब मैं बयान करने लगा हूं। जब भी कलाम के अंदर इल्ला आए, और इल्ला किस लिए आए? इस्तिस्ना के लिए। याद रखो, इल्ला कभी सिफत के लिए भी आता है गैरून के माना में, कभी कभार इल्ला सिफत के लिए भी आता है गैरून के माना में, जैसे ला इलाहा इल्लल्लाह। अब यहां पर जो इल्लल्लाह, ये जो इल्ला आया है, ये सिफत है भाई। ला इलाहा गैरुल्लाह, इलाह मौसूफ है और गैरुल्लाह उसकी सिफत है। तवज्जो है। और इलाह ला नफी जिंस का इसम है, किसका? ला रजुला फिदार, कोई शख्स घर में नहीं, तो रजुल क्या है? ला का इसम, और फिदार उसकी खबर। तो यहां पर भी ला इलाहा ला नफी जिंस, इलाहा उसका इसम, और ये इल्लल्लाह ये उसकी सिफत है। इल्लल्लाह बमाने गैरुल्लाह के है, और खबर महजूफ है मौजूदुन। ला इलाहा गैरुल्लाह मौजूदुन भाई, ला इलाहा गैरुल्लाह मौजूदुन। हां, एक इश्काल आपके जहन में आएगा कि ला इलाहा ये तो मबनी अलल फता है, मबनी अलल फता है, और गैरुल्लाह ये तो सिफत है, मौसू सिफत का इराद तो एक जैसा होना चाहिए। तो जवाब ये कि ये सिफत उसके महल के ताबिया है, और महल के एतबार से इलाह मरफू है, मुबतदा है। आपने पढ़ा है लाइन ऑफ जींस किस पर दाखिल होता है? मुबतदा और खबर पर। तो ये इलाह असल में क्या था? मुबतदा था। तो ये लफ्जन मबनी अल फता है, महलन ये मरफू है, मुबतदा है भाई। तो इसके महल के ताबे सिफत ले आए गैरुल्लाह भाई, तवज्जो है। और फिर गैरू की जगह क्या आ गया? इल्ला आ गया। गैरू मरफू था, तवज्जो है। इल्ला तो हर्फ है, उस पर तो एराब नहीं आ सकता, तो वही एराब लफ्ज़ अल्लाह पर आ गया, ला इलाहा इल्लल्लाह, और खबर महजूफ है मौजूदुन, यानी कोई ऐसा माबूद जो अल्लाह के अलावा हो वो मौजूद नहीं है भाई। अल्लाह के अलावा और कोई माबूद नहीं भाई जी। तो इल्ला कभी कभार सिफत के लिए भी आता है बमाने गैर उनके, लेकिन यहां हम किसकी बात कर रहे हैं? मुस्तस्ना बा इल्ला, वो इल्ला जो किस लिए आए? इस्तिस्ना के लिए आए। तो देखिए नक्शे पर, जब भी कलाम के अंदर इल्ला आए और वो इस्तिस्ना के लिए हो, तो आप फौरन सबसे पहले ये गौर करें कि वो मुस्तस्ना मुनकते है या मुत्तसिल है, यानी वो पहले दाखिल था उसको निकाला गया है, या शिरे से या पहले से दाखिल ही नहीं था। अगर वो मुनकते हो तो फिर समझ जाए वो मनसूब होगा, वो क्या होगा? लिहाजा ये जो आपने मुनकत्या लिखा, इसके नीचे लिख लीजिए छोटा सा मनसूबुन, मनसूबुन, मुनकत्या के नीचे छोटा सा मनसूब लिख लें, बल्कि साथ ये भी लिख लें मनसूब अक्सर लुगात में, मनसूब अक्सर लुगात में। बनू तमीम वाले थोड़ा इख्तिलाफ करते हैं जी, लेकिन अक्सर लुगात में क्या होगा? मुस्तस्ना मुनकतिया मनसूब होगा जी। तो देखा आपने मुस्तस्ना बा इल्ला आया, आपने सबसे फिर देखे नक्शे पर मुस्तस्ना बा इल्ला आया, आपने सबसे पहले गौर किया कि वो मुत्तसिल है या मुनकतिया। अगर मुनकतिया है तो मनसूब है, उस पर क्या पढ़ना है? नसब। अगर मुत्तसिल है फिर देखो वो कलाम मूजब है या गैर मूजब। मूजब या गैर मूजब किसे कहते हैं, ये याद रखना, वो कलाम जिसमें नफी नहीं या इस्तेफाम आए, जिसमें नफी नहीं या इस्तेफाम आ जाए वो गैर मूजब है। तवज्जो है, नफी और नहीं में फर्क जानते हो या नहीं? नफी जिसमें हर्फ नफी आ जाए, और नहीं वो जो अमर और नहीं है जिसमें किसी काम से रोका जाता है, ला तजरिब, वो नहीं मुराद है। तो कलाम गैर मूजब किसे कहते हैं? जिसमें नफी नहीं या इस्तेफाम हो। तो नफी नहीं या इस्तेफाम हो, ये क्या है? कलामे फिर दोहराएं भाई, खूब आपके जहन ये बात जहन नशीन होनी चाहिए। मुजब किसे कहते हैं, गैर मुजब किसे कहते हैं? जिस कलाम में नफी नहीं या इस्तेफाम हो वो गैर मुजब है, और अगर ये नफी नहीं या इस्तेफाम ना हो तो वो मुजब है। बात समझ में आ गई। तो लिहाजा आपने सबसे पहले क्या देखना है, मुस्तसना मुत्तसिल है या मुनकते है? मुनकते हो तो नसब पढ़ देना, मुत्तसिल हो तो फिर फौरन देखो कि कलाम क्या है, मुजब है या गैर मुजब है। अगर वो उसमें नफी नहीं है इस्तेफाम नहीं है यानी वो मुजब है तो भी वो मंसूब होगा। तो मुजब के नीचे भी मंसूब लिख लीजिए, मुजब के नीचे भी मंसूब लिख लीजिए। उसके बाद अगर वो कलाम गैर मुजब हो, गैर मुजब हो, फिर उसमें फौरन जल्दी से गौर कीजिए कि कहीं मुस्तस्ना को मुस्तस्ना मिन्हू पर मुकद्दम तो नहीं है। मुस्तस्ना भाई पहले कौन आता है? मुस्तस्ना मिन्हू, और इल्ला के बाद क्या आता है? मुस्तस्ना। लेकिन कभी कभार ऐसा करते हैं, ये मुस्तस्ना मिन्हू को उठाकर बिल्कुल आखिर में ले जाते हैं। मुस्तस्ना मिन्हू जो इल्ला वगैरह से पहले था उसको उठाकर आखिर में ले जाते हैं, यानी मुस्तस्ना के भी बाद आ जाता है। तो देखो मुस्तस्ना मुकद्दम हो गया किस पर? मुस्तस्ना मिन्हू पर। तो लिहाजा जब कलाम गैर मुजब हो तो फिर आपने फौरन देखना है कि मुस्तस्ना मुकद्दम है या मुकद्दम नहीं है। अगर मुस्तस्ना मुकद्दम है तो भी मंसूब होगा। तो इसके नीचे भी लिख लीजिए, मुस्तस्ना मुकद्दम के नीचे भी मंसूब लिख लीजिए। लिख लिया? तवज्जो है, याद रखो, मा जाअनी अहदुन इल्ला ज़ैदन। तवज्जो है भाई, कभी कभार मुस्तस्ना मिनहू को आखिर में ले जाते हैं। मसलन मैं कहता हूं मा जाअनी अहदुन, मेरे पास कोई एक भी नहीं आया, इल्ला जैदन सिवाय किसके? जैद के, यानी जैद आया है, जैद आया है। अब तो कभी कभार ये जो मुस्तस्ना मिन्हू माकबल में अहदुन है, ये मुस्तस्ना मिन्हू है, और जैद क्या है? मुस्तस्ना। तो कभी कभार ये अहद को उठाकर बिल्कुल आखिर में ले जाएंगे, मा जाअनी इल्ला जैदन अहदुन। तो देखो मुस्तस्ना मुकद्दम हो गया किस पर? मुस्तस्ना मिन्हू पर। तो इस सूरत में भी मंसूब होगा। और अगर गैर मुकद्दम है यानी मुस्तस्ना, यानी मुस्तस्ना मिन्हू अपनी जगह पर है, इसको आखिर में नहीं लेकर गए, तो फिर देख लीजिए कि मुस्तस्ना मिन्हू मजकूर है या मजकूर नहीं। जैसे ये मिसाल है, मा जाअनी अहदुन इल्ला ज़ैदन। तवज्जो है, मा जाअनी अहदुन इल्ला ज़ैदन, ये अहदुन क्या है? मुस्तस्ना मिन्हू। ये कभी जिक्र होगा, कभी इसको हजफ कर देंगे, मा जाअनी इल्ला ज़ैदन, अहदुन को हजफ कर दिया, और कभी अहदुन होगा, मा जाअनी अहदुन इल्ला ज़ैदन। तवज्जो है, तो फिर क्या करेंगे? देखिए भाई वो नक्शे पर देखिए कि अगर मुस्तस्ना मुकद्दम भी ना हो, गैर मुकद्दम हो, फिर देखेंगे मुस्तस्ना मिन्हू मजकूर है या मजकूर नहीं है। अगर मुस्तस्ना मिन्हू मजकूर हो तो इसके नीचे दो एराब आपने लिखने हैं। अगर मुस्तस्ना मिन्हू मजकूर हो तो उसको मंसूब भी पढ़ सकते हैं और बदल भी बना सकते हैं। जो आपने लिखा ना मुस्तस्ना मिन्हू मजकूर, इसके नीचे दो एराब लिखते हैं मुस्तस्ना मिन्हू मजकूर के नीचे, कि मंसूब होगा या बदल होगा, और बदल के साथ छोटा सा लिख लें बदल मुख्तार है यानी पसंदीदा है, बदल मुख्तार है यानी पसंदीदा है। और आखिरी रह गया, अगर मुस्तस्ना मिन्हू गैर मजकूर हो इसका क्या एराब होगा? तो इसके नीचे लिख लीजिए अला हसबिल हवामिल, अला हसबिल हवामिल। लिख लिया? फिर देख लीजिए नक्शा भाई, फिर देखिए नक्शा ऊपर से भाई, कलाम में जब भी इल्ला आए और इस्तेसना के लिए हो तो आपने सबसे पहले यह गौर करना है कि मुस्तस्ना मुनकतिया है या मुत्तसिल है। अगर मुनकतिया हो तो मंसूब होगा, अगर मुत्तसिल है फिर गौर कर लें कि वो कलाम मूजब है या गैर मूजब। अगर मूजब है तो भी मुस्तस्ना मंसूब होगा, अगर गैर मूजब है फिर जल्दी से गौर कर लें कि मुस्तस्ना मिन्हू मुकद्दम है या गैर मुकद्दम है। अगर मुकद्दम हो तो भी मुस्तस्ना मंसूब होगा, और अगर गैर मुकद्दम है फिर जल्दी से गौर कर लें कि मुस्तस्ना मिन्हू मस्कूर है या मस्कूर नहीं। अगर मुस्तस्ना मिन्हू मस्कूर है तो उस पर नसब पढ़ना भी जायज और उसको बदल बनाना भी जायज, तवज्जो है। और अगर मुस्तस्ना मिन्हू गैर मस्कूर हो तो फिर मुस्तस्ना का एराब अला हसबिल अवामिल होगा, आमिल जिस किस्म के एराब का तकाजा कर रहा होगा वही एराब आएगा। जैसे मिसाल देखो, मा जा अनी अहदुन इल्ला जैदन, मा जा अनी अहदुन इल्ला जैदन, मेरे पास कोई एक भी नहीं आया। जब मैंने कहा मेरे पास कोई एक भी नहीं आया तो जैद भी इसमें आ गया या नहीं, सबकी नफी हो गई। और फिर मैंने इल्ला के बाद जैद को निकाल दिया तो ये कौन सा इस्तिस्ना हुआ, मुत्तसिल या मुनकतिया? पहले दाखिल था फिर निकाल दिया माकबल के हुक्म से, पहले दाखिल था माकबल के हुक्म में, सबकी नफी की कि कोई भी नहीं आया, मालूम हुआ जैद भी नहीं आया, और फिर क्या किया जैद को निकाला उसमें से कि नहीं जैद आया है, तो ये मुस्तस्ना मुत्तसिल है। तो जरा इस मिसाल पे नजर रखो, बल्कि ये मिसाल अपने सामने लिखें, जरा जल्दी करें भाई जल्दी। मा जा अनी अहदुन, मा जा अनी अहदुन इल्ला जैदन, लिख लिया जी। देखो अब ये आया, इल्ला आया कलाम के अंदर। अब आप हैरान हैं कि ये जैद पर मैं क्या पढ़ूं, जैद पर क्या पढ़ूं, तो सबसे पहले फौरन गौर करो ये मुस्तस्ना मुत्तसिल है या मुनकतिया है। मुत्तसिल है क्योंकि मैंने गौर माना पे गौर कर लो, मेरे पास कोई भी नहीं आया, मालूम है दुनिया का कोई भी शख्स नहीं आया, जैद भी उन्हीं में था वो भी निकल गया। फिर आगे इल्ला जैद के जरिए इस बात किया, तो सबसे पहले ये देखें ये मुनकते है या मुत्तसिल, मालूम है ये मुत्तसिल है जी। फिर फौरन गौर करें कि कलाम मूजब है या गैर मूजब, कौन सा कलाम है, गैर मूजब है क्योंकि नफी इसके अंदर मौजूद है भाई। मा जा आ, बात समझ में आ गई। उसके बाद फिर देखें कि मुस्तस्ना मिनहू पर मुस्तस्ना मुकद्दम तो नहीं, मुस्तस्ना मिनहू क्या है, अहद है, और मुस्तस्ना क्या है, जैद, और ये जैद मुस्तस्ना मिनहू पर मुकद्दम नहीं है, मुकद्दम नहीं है। जब तो जब गैर मुकद्दम हो, देखो नक्शे पे भी, नक्शे के मुताबिक आप चलते जा रहे हैं, जब गैर मुकद्दम है फिर आप देखें कि मुस्तस्ना मिन्हू मस्कूर है या गैर मस्कूर जी। मुस्तस्ना मिन्हू क्या है यहां पर, मस्कूर है, अहदुन मस्कूर है, तो इस सूरत में दो एराब पढ़ना जायज ये जैद पर, इस पर नसब पढ़ना भी जायज, मा जा अनी अहदुन इल्ला जैदन, और इस पर इसको बदल भी बना सकते हैं मुस्तस्ना मिन्हू से, और बदल और मुबदल मिन्हू का एराब एक होता है, और अहद उन पर रफा तो जैद पर भी क्या पढ़ेंगे, रफा, तो दोनों तरह आप पढ़ सकते हैं, मा जा अनी अहदुन इल्ला जैदन और मा जा अनी अहदुन इल्ला जैदुन, दोनों तरह पढ़ सकते हैं। और पसंदीदा क्या है, बदल बनाना यानी जैदुन पढ़ना पसंदीदा है। और अगर यहां से, तवज्जो से सुनो, अगर यहां से ये अहदुन को हजफ कर दें, यह देखा मुस्तस्ना मिन्हू गैर मजकूर हो गया, तो फिर मुस्तस्ना का क्या एराब होगा, अला हसबिल अवामिल होगा। देखो अहदुन को आप खत्म कर दें, मा जा अनी अहदुन क्या था, फाइल, तो फाइल खत्म हुआ, और फेल के लिए हमेशा क्या चाहिए, फाइल तो जरूर चाहिए, तो अब ये इल्ला के बाद जो जैद आ रहा है इसको फाइल बना देंगे, और फाइल क्या होता है, मरफू, तो अब यूं पढ़ेंगे मा जा अनी इल्ला जैदुन। तरीका समझ में आ गया अच्छी तरह। क्या करेंगे, पहले मुनकते और मुत्तसिल को देखो, मुनकते हो तो मंसूब, मुत्तसिल हो तो फिर क्या देखो, मूजब है या गैर मूजब, मूजब हो तो मंसूब, गैर मूजब हो तो फिर क्या देखो कि मुस्तस्ना मुकद्दम है या गैर मुकद्दम, अगर मुकद्दम हो तो भी मंसूब, अगर गैर मुकद्दम हो फिर देखो मुस्तस्ना मिन्हू मस्कूर है या गैर मस्कूर, अगर मस्कूर हो तो मंसूब भी पढ़ सकते हैं और बदल भी पढ़ सकते हैं, और बदल पढ़ना मुख्तार है, और अगर मुस्तस्ना मिन्हू गैर मस्कूर हो तो आला हसबिल अवामिल, जैसा आमिल होगा, रफे वाला आमिल होगा तो रफा पढ़ेंगे, नसब वाला हो तो नसब पढ़ेंगे, जर वाला हो तो जर पढ़ेंगे। तफसील समझ में आ गई। अब इसमें याद रखना ये जो आखिरी किस्म है मुस्तस्ना गैर मस्कूर है और एराब अला हसबिल अवामिल है, इसका नाम याद रखना भाई, इसको मुस्तस्ना मुफर्रग कहते हैं। ये जो आखिरी किस्म है जिसका एराब आला, जिसमें मुस्तस्ना मिन हो गैर मस्कूर है और एराब अला हसबिल अवामिल है, इसका ये नाम साथ लिख लो भाई, इसका नाम मुस्तस्ना मुफर्रग है। ये इसका नाम मुस्तस्ना मुफर्रग है, मुस्तस्ना मुफर्रग है। देखो मुस्तस्ना मुफर्रग ये जगह जगह लफ्ज आएगा तो आपको ताकि इसकी पहचान होनी चाहिए। मुस्तस्ना मुफर्रग में मुस्तस्ना मिन्हू गैर मस्कूर होगा, तो जब मुस्तस्ना मिन्हू मस्कूर ना हो तो इसका नाम क्या है, मुस्तस्ना मुफर्रग। देखो आप खुद माना में गौर कर लें, मुफर्रग का माना है फारिग किया हुआ। देखो इसमें मफूल का सीगा है, इसके अंदर भी आमिल जो है उसको फारिग किया गया है, किस से, मुस्तस्ना मिन्हु से, उसको हज़फ कर दिया तो उससे आमिल को फारिग कर दिया गया है, किस में अमल करने के लिए, मुस्तस्ना में अमल करने के लिए। माजा अनी अहदुन, ये माजा किस में अमल कर रहा था, अहदुन में, अहदुन को हज़फ कर दिया तो अब माजा फारिग हुआ और किस में अमल कर रहा है, मुस्तस्ना के अंदर, तवज्जो है, तो इसको मुस्तस्ना मुफर्रग कहते हैं कि जिसमें आमिल फिर मुस्तस्ना के अंदर बराह रास्त अमल करता है। जी ये थी मुस्तस्ना की बहस की तफसील भाई। याद रखो किताब में ये बड़े पेचीदा तरीके से है, तो किताब में आपको बताएंगे कि मुस्तस्ना का इराब चार किस्म पर है, कभी मंसूब होता है, कभी मजरूर होता है, कभी बदल होता है और कभी अला हसबिल अवामिल होता है, तो फिर तालिब इल्म परेशान हो जाता है, लेकिन इस तरतीब से याद रखें फिर इंशाल्लाह कोई मुश्किल पेश नहीं आएगी भाई। बात समझ में आ गई जी, अब आइए किताब पर भाई। जी देखिए भाई किताब पर भाई, पहले मतन मतन देख लीजिए। अल मुस्तस्ना मुत्तसिलुन व मुनक़तिउन, मुस्तस्ना जो है मुत्तसिल है और मुनक़तिउ है। फल मुत्तसिलु वल मुखरजु अन मुतअद्दिदिन, बस मुत्तसिल वो है जिसको निकाला गया हो मुतअद्दिद से, लफजन औ तकदीरन, और वो मुतअद्दिद कभी लफजन होगा और कभी तकदीरन होगा। वो मुतअद्दिद क्या है, कभी लफजन होगा और कभी तकदीरन। भाई याद रखो मुस्तस्ना मुत्तसिल वो है जिसको माकबल से निकाला गया हो, और ये उसी सूरत में हो सकता है जब माकबल में जो चीज जिक्र है उसमें तअद्दुद होना चाहिए, उसमें कसरत होनी चाहिए। अगर उसमें कसरत है तो आप इसको उसमें से निकाल सकते हैं, अगर कसरत और अदद नहीं है तो फिर निकाल भी नहीं सकते। मसलन मैं कहता हूं मा जानी जैदुन इल्ला जैदन, मा जानी मेरे पास जैद नहीं आया मगर जैद आया, भाई ये क्या माना है, पहले आपने कहा जैद नहीं आया फिर आपने क्या कहा इल्ला जैदन मगर, तो देखो यहां माकबल में तअद्दुद है ही नहीं, तो माकबल में तअद्दुद होना चाहिए ताकि इल्ला के माबाद को उससे क्या किया जा सके, निकाला जा सके। तो वो जो माकबल में मुतअद्दिद है वो कभी लफ्जों में जिक्र होगा और कभी आपने पढ़ा है उसको हजफ भी कर लेते हैं, तो जब हजफ कर लिया तो वो जिससे आप माबाद को निकाल रहे हैं वो लफ्जन तो मौजूद नहीं लेकिन तकदीरन मौजूद है। लफ्जन यानी जिस पर हम तलफ्फुज कर रहे हैं बाकायदा लफ्जों में मौजूद है, तकदीरन लफ्जों में तो मौजूद नहीं लेकिन फर्ज कर लें कि वो मौजूद है। मा जाअनी अहदुन इल्ला जैदन, देखा यहां अहदुन लफ्जों में मजकूर है और इसको फिर हजफ कर लें, मा जाअनी इल्ला जैदुन, यहां देखो वो मुतअद्दिद क्या है, लफ्जन नहीं है बल्कि तकदीरन है जिससे जैद को निकाला गया। बात समझ में आ गई, तो कहते हैं फल मुत्तसिलु हुवल मुखरजु अन मुतअद्दिदिन, तो मुस्तस्ना मुत्तसिल वो है जिसको निकाला गया हो मुतअद्दिद से, लफ्जन औ तकदीरन, और वो मुतअद्दिद लफ्जन होगा या तकदीरन होगा। बि इल्ला व अखवातिहा, और किसके जरिए निकाला गया है, इल्ला और उसके अखवात यानी उस जैसे कलिमात के जरिए। दूसरी किस्म देखिए आगे मतन, वल मुनक़तिउ वलमुनक़तिउल मज़कूर बादहा, और मुस्तस्ना मुनक़ति वो है जो मज़कूर हो इल्ला वगैरह के बाद, गैर मुखरजिन, और उसको निकाला नहीं गया, मुस्तस्ना मुनकतिया को माकबल से निकाला नहीं गया। क्यों नहीं निकाला गया? क्योंकि वो उनमें दाखिल ही नहीं था। दाखिल होता तो फिर निकाला जाता, वो दाखिल ही नहीं था। ये माना है वल मुनकति उल मजकूरु बादहा गैरा मुखरजिन, और मुनकते वो है जो इल्ला वगैरह के बाद जिक्र हो और निकाला न गया हो। चलें बस करें, बात समझ में आ गई, यहां तक हल हो गया। चलिए बस कल फिर ये सारी इबारत कल फिर हल कर लेंगे। बस बेहदा वल मराम अल्लाह आलम बिहकीकतिल कलाम।